నమస్తుభ్యం వర్ధే కామరూపిణి విద్యారంభం కరిష్యామి సిద్ధిర్భవతు మే సదా. సరస్వతి మాతా కి కృపా ప్రసాద్ సే హమ్ సబ్ మతి ఆర్ సుజ్ఞాన్ కో ధారణ కియే హువే హై, ఉన్మే సే భీ బహుత్ అల్ప జ్ఞాన్ హై ఆజ్ హమ్ సబ్ కో, లేకిన్ ఉస్ అల్ప జ్ఞాన్ కో భీ అగర్ హమ్నే అప్నే జీవన్ కే అందర్ తథ్య కే రూప్ మే సత్య కే రూప్ మే సాకార్ కర్ లియా, స్వీకార్ కర్ లియా, తో సమ్జో పంచమ కాల్ మే జన్మ లేనా భీ హమారా సార్థక్ హో జాయేగా. యే గ్రంథ చల్ రహా హై, ఇస్కీ పరీక్షా భీ తీన్ చాప్టర్ కీ లోగ్ దే చుకే హై ఆర్ ఉస్కే అందర్ సమ్యక్ దర్శన్ కా ప్రకరణ చల్ రహా హై. సమ్యక్ దర్శన్ శబ్ద సే సబ్ లోగ్ పరిచిత్ హోంగే, ఆప్ కోటా బూందీ సే ఆయే హో, సమ్యక్ దర్శన్ శబ్ద తో కమ్ సే కమ్ జాన్తే హై, భలే ఉస్కీ పరిభాషా నా జాన్తే హో. తో పరిభాషా మే యే హై సమ్యక్ దర్శన్ కా మత్లబ్ అచ్చే ప్రకార్ సే సమీచీన రూప్ సే దృష్టి సమ్యక్ దర్శన్ హై. ఏక్ దృష్టి హోతీ హై ఆంఖో కీ ఔర్ ఏక్ దృష్టి హోతీ హై ఆత్మా కీ. సమజ్ గయే? ఏక్ దృష్టి హోతీ హై ఆంఖో కీ, ఏక్ దృష్టి హోతీ హై ఆత్మా కీ. ఆంఖో కా విజన్ భీ అగర్ ఠీక్ నహీ హై తో సమ్జో ఆంఖో మే రోగ్ హై. ఐసే ఆత్మా కా విజన్ భీ అగర్ ఠీక్ నహీ హై తో సమ్జో ఆత్మా మే భీ రోగ్ హై. వో కిస్ చీజ్ కా రోగ్ హై? కర్మో కా, మిథ్యాత్వ కా, అజ్ఞానతా కా రోగ్ హోతా హై. ఉస్ అజ్ఞానతా కో హటా కర్కే జబ్ రైట్ విజన్ ఆత్మా కా హో జాతా హై, మనే సమీచీన్ దృష్టి ఆత్మా కీ హో జాతీ హై, తబ్ వ్యక్తి సమ్యక్ దృష్టి బన్ జాతా హై ఔర్ వో కోయి భీ అసంభవ నహీ హై. దేవ్ శాస్త్ర గురు పర్ సచ్చే దేవ్ సాత్ గురు పర్ శ్రద్ధాన్ కర్నా బస్ సమ్జో సమ్యక్ దర్శన్ హై. కుచ్ లోగ్ భ్రమిత్ కర్ దేతే హై కి ఆజ్ హమే పంచమ కాల్ మే సమ్యక్ దర్శన్ హో హి నహీ సక్తా, జితనే భీ సాధు హై కోయి సమ్యక్ దృష్టి నహీ హై. కి కౌన్ కహతా హై కి అప్నీ ఆత్మా కో భీ ఠగ్నే వాలే ఔర్ దూస్రో కో భీ సంసార్ సముద్ర మే డుబానే వాలే పత్థర్ కీ నావ్ కే సమాన్ జో ఏకాంత మతావలంబీ హోతీ హై ఉనికీ ఐసీ ధారణా హోతీ హై ఔర్ వో ఐసీ ధారణా సే లోగో కో భ్రమిత్ కర్తే హై. పర్ ఆప్ ఏక్ గురు కే సాన్నిధ్య మే బైఠే హై ఔర్ ఆజ్ కమ్ సే కమ్ సైకడో నగరో కో సంతో కే చాతుర్మాస్ కా సాన్నిధ్య ప్రాప్త హో రహా హై. సబ్ నగరో మే సంత జన్ ప్రవచన్ కర్కే లోగో కో భగవాన్ కే నజదీక్ కర్తే హై. జహాన్ పర్ కోయి పూజా పాఠ కర్నే వాలా నహీ హోతా వహాన్ ఇన్ చాతుర్మాసో కే పశ్చాత్ సైకడో యువాఓ కీ భీడ్ లగ్ జాతీ హై. యే క్యా హై? యే సంత సాన్నిధ్య కా సుపరినామ్ హోతా హై. యహీ తో హై సమ్యక్ దర్శన్ ఔర్ కహీ సే సమ్యక్ దర్శన్ ఖరీదా నహీ జాతా. కహీ సే సమ్యక్ దర్శన్ హమ్ ఉధార్ నహీ లా సక్తే. కహీ సమ్యక్ దర్శన్ కితాబో మే నహీ రఖా, మందిర్ మే నహీ రఖా, లేకిన్ మందిర్ కే నజదీక్ లానే వాలే సంతో కే పాస్ జరూర్ సమ్యక్ దర్శన్ నామ్ కీ చీజ్ హోతీ హై. తో ఇస్ పుస్తక్ కే అందర్, ఇస్ గ్రంథ్ కే అందర్ పూజ్య జ్ఞానమతి మాతాజీ నే సమయ సార్, ప్రవచన సార్, నియమ సార్, షట్ ఖండాగమ్ ఇన్ 68 గ్రంథో కే ఆధార్ సే సమ్యక్ దర్శన్ ఆది విషయో కా వర్ణన్ కియా హై. పేజ్ నంబర్ 51 పర్ చల్తే హై ఇస్మే. తో కహా హై కి మునియో కే చారిత్ర మే హీ దో భేద హై, నా కి శ్రావకో కే చారిత్ర మే. శ్రావక్ తో ఏక్ దేశ సంయమీ హో సక్తా హై జో అనువ్రత లే లేతే హై, ఉన్కే సకల్ సంయమ్ హోతా హి నహీ ఔర్ సకల్ సంయమ్ లే లే తో శ్రావక్ నహీ కహలాయేంగే, వో తో ముని బన్ జాయేంగే. ఇస్లియే కహా హై కి శ్రావక్ కే కోయి దో భేద నహీ హై, ఇస్లియే ఉన్కే కభీ భీ శుద్ధోపయోగ నామ్ కీ చీజ్ నహీ హో సక్తీ. శుద్ధోపయోగ నిర్గ్రంథ దిగంబర్ మునియో కే హీ హోతీ హై ఔర్ వో భీ కిన్ కే ఉత్తమ్ సంగణన్ ధారీ మునియో కో చతుర్థ కాల్ మే హీ శుద్ధోపయోగ హోతా హై. జైసే గజ ముని కే ఊపర్ మస్తక్ పర్ అంగీఠీ జలా దీ గయీ, उन्होंने अंगीठी के माध्यम से अपने शरीर को तो जलाया ही, कितनी वेदना हुई होगी, पर वे सदोपयोग में लीन थे। उन्हें उन्होंने ना किसी पर गुस्सा किया, ना किसी को शत्रु समझा और ना अग्नि को बुझाया। उठ करके भाग जाते, अग्नि को फेंक देते, उपसर्ग दूर हो जाता। लेकिन नहीं, सच्चे निर्ग्रंथ दिगंबर बीतरागी संत जो होते हैं, वे अरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन तुतिकरण अर्घावतारण असि प्रहारण में सदा समता धरण, समता भाव रख करके उन्होंने सहन किया। पांडवों के ऊपर अग्नि का उपसर्ग चलता रहा, जलते जलते कड़े मुकुट सब पहनाए गए, इधर से शरीर जला और उधर से सुदोपि में लीन होकर उन्होंने कर्मों को जलाया। तो भव्यात्माओं, जो प्रकरण चल रहा है उससे आप समझ लेना कि सातवें गुण स्थान के अंतिम पाए से ही शुद्धोपयोग शुरू होता है। आग के मुनिराज भी शुभोपयोग में है और गृहस्थ तो शुभोपयोग और अशुभोपयोग दोनों में है। तो चारित्र ही निश्चय से धर्म है, ऐसा कथन है। वह चारित्र अपर और उपेक्षा संयम के भेद से, तराग और वीतराग के भेद से, अथवा शुभोपयोग और शुद्धोपयोग के भेद से दो प्रकार का होता है। माने जो 28 मूल गुण धारण किए जाते हैं, आचार्यों के 36 मूल गुण होते हैं, उपासक के 25 मूल गुण अलग से होते हैं, लेकिन सबके मूल में 28 मूल गुण तो होते ही होते हैं। उसके बिना तो कोई दिगंबर संत समझे तो है ही नहीं। और आरिकाओं के उपचार से 28 मूल गुण होते हैं, 5 महाव्रत होते हैं, इसलिए उनको उपकार महाव्रती कहा है, संयतिका कहा है, उन्हें कभी श्रावक श्राविकाओं की श्रेणी में नहीं लिया, समझ गए ना। इसीलिए मुनियों के समान आरिकाओं की भी नवधा भक्ति होती आहार में, मुनियों के समान आरिकाओं की भी अष्ट द्रव्य से पूजा होती है। क्षायिक सम्यक दृष्टि राम ने भी गणिनी माता की पूजा की, समझ गए। तो आप सब मुनि और आरिका तुल्य चुल्लिकाओं की खूब भक्ति करते हैं और भक्ति करने से ही संसार समुद्र को तिरा जाता है। इसलिए बताया कि जो मूल गुण रूप से चारित्र धारण किया जाता है वह सराग चारित्र है, वह शुभोपयोग अवस्था है, वह अपरहत संयम है। और जब मुनिराज शुद्धोपयोग में लीन हो जाते हैं, उन्हें अपने पिच्छिका मंडल का भी कोई भान नहीं रहता, अपने शरीर तक का बिल्कुल खल नहीं रहता, ऐसी स्थिति में उपेक्षा संयम, वीतराग अवस्था और शुद्धोपयोग अवस्था उनकी प्रकट होती है। किसी भी ग्रंथ में श्रावकों के विकल चारित्र में सराग वीतराग अथवा निश्चय व्यवहार ऐसे दो भेद देखने को नहीं मिलते, क्योंकि श्रावक तो सरागी ही होता है और साधु सरागी और वीतरागी दो तरह के होते हैं। सरागी मतलब संसार की बात करने वाले नहीं, सरागी मतलब मूल गुणों में राग रखने वाले, भगवान की भक्ति में राग रखने वाले, ऐसे ही सरागी। और जब आत्मा में राग रखने वाले हो जाते हैं तो वीतरागी कहे जाते हैं। इस प्रकार से समझना है, क्योंकि ये प्रकरण चाहे आप एक लाइन पढ़ें लेकिन ये हृदयंगम करने का है। देखो आप सब हैं गृहस्थ जन, आप वीतरागी कभी नहीं हो सकते। एक ज्ञानार्णव ग्रंथ है शुभ चंद्राचार्य का लिखा हुआ, उन्होंने कहा कि गधे के सींग उग जाए, कोई गधे के सींग उगती है कहीं? क्यों भाई, पूरे संसार के अंदर गधा नाम का कोई प्राणी है तो उसके सींग नहीं उगेगी। और आकाश में पुष्प खिल जावे, आकाश में कोई पुष्प खिलता है? नहीं। माने असंभव संभव हो जाए, लेकिन गृहस्थों के कभी शुद्धोपयोग नहीं हो सकता, कभी वीतरागता नहीं आ सकती और कभी भी वे निर्विकल्प ध्यानी नहीं हो सकते। उनके लिए तो कहा कि ग्रह कर्मणापि निचितम कर्म मीमांष्टि खलु ग्रह विमुक्ता नाम अतिथि नाम प्रति पूजा रुधिर मलम धावते वारी। आचार्य समंतभद्र स्वामी के शब्द हैं। रत्नकरण शाकाचार के अंदर उन्होंने कहा कि ग्रह कर्म में निश्चित होते हुए, रत रहते हुए, तल्लीन रहते हुए, उन आरंभ परिग्रह के कार्यों को करते हुए भी कर्म विमार्षि खलु ग्रह विमुक्ता नाम, अपने कर्मों को संचित करते हुए भी कर्मों से छूटने की ओर जो अग्रसर साधु लोग हैं, ऐसे अतिथि नाम प्रतिपूजा, जो अतिथि बनकर आपके द्वार पर आते हैं, आप उनका नवधा भक्ति से पड़गाहन करते हैं, तो समझो उनकी पूजा करने से, उनको आहार देने से, उनकी वैयावृत्ति करने से, उनकी नवधा भक्ति करने से कैसा पुण्य मिलता है। रुधिर मलम धावते वारी, सब लोग आंखें खोलो, जाग जाओ, अयोध्या में आए हो जागने के लिए, सोने के लिए नहीं। कैसे? जैसे खून का कपड़ा कोई खून से साफ नहीं होता, उसके लिए स्वच्छ जल की आवश्यकता होती है, तो स्वच्छ जल से खून के कपड़े को धोने के समान गृहस्थ जन अपने पापों को नष्ट करते हैं संतों की सेवा करके, समझ गए। और आज संत हैं और पंचम काल के अंत तक भी संत रहेंगे, इस बात को जानना है हर गृहस्थ को, वरना अगर गुमराह हो गए, कहीं समय सार पढ़ करके साधुओं की भक्ति से दूर हो गए, तो अपना क्या है, संसार में डूब जाएंगे, अपना कल्याण नहीं हो सकता। कुंद कुंद आचार्य ने कहा कि पंचम काल के अंत तक साधु रहेंगे, और जो ऐसा नहीं मानते वो अज्ञानी है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, चतुर्थ काल के साधुओं की तो दुहाई देते हैं, और जो पंचम काल में सामने बैठे हैं उनको नहीं मानते, उनको देखते ही हाथ पीछे कर लेते हैं। ये क्या है? ये उनके पाप कर्म का उदय होता है। अरे ऐसे आचार्य शांति सागर महाराज हुए, जो चौथे काल की चर्या को दर्शाने वाले थे, सांप तीन तीन चार चार बार उनके शरीर पर पीड़ा करके चला गया, उनके शरीर पर लाखों चींटियां चढ़ गईं, शरीर लहूलुहान हो गया, और आचार्य महाराज ध्यान में लीन रहे, और वो कहते थे कि आज हम अभ्यास कर रहे हैं आत्मा और शरीर की भिन्नता का, इसलिए शरीर से निर्मम होना आवश्यक है। तो महानुभाव, ऐसे ऐसे संतों के दर्शन इन्होंने किया है, समझ गए, ऐसे संतों का दर्शन किया है ज्ञानमती माता जी ने। तो मैं देखती हूँ कि इनके 72 साल के जीवन में कई बार गंभीर स्थितियां आई, टाइफाइड बुखार हो गया, ट्रिपल ज्वाइंटिस हो गया, डॉक्टर कहते थे 72 घंटे से ज्यादा इन्हें तुम जीवित नहीं रख सकते। ऐसे समय में ये क्या करती थी, ये भगवान की भक्ति की ओर बस कहती थी, हमें समय सार की गाथाएं सुनाओ, हमें इंद्रधनुष विधान की जयमाला सुनाओ, जिनके अंदर अध्यात्म भरा है, जिनके अंदर खूब भगवान की भक्ति का रस भरा है, जिसके अंदर चारों गतियों के दुख सुनाए गए हैं भगवान को, उन दुखों को सुनने से पढ़ने से ये होता है कि आत्मा आज तुझे क्या दुख है, तूने तो नरकों में न जाने कितने दुखों को सहन किया है। जरा सी गर्मी सर्दी की बाधा आती है, हम विचलित हो जाते हैं, जानना है कि नरक में कितना दुख सुख सहा है, कढ़ाई में तले गए, और ऐसी ठंडी सहन की है जहां मेरु समान लोग गली जाए, ऐसी शीत उष्णता थाए। तो ये कौन चरितार्थ करते हैं अपने जीवन में, संत ही तो करते हैं। तो जब ऐसे संतों का हम दर्शन करेंगे, उनका सानिध्य लेंगे, उनका सामीप्य लेंगे, तो निश्चित रूप से जैसे बच्चा जैसा बड़ों को देखता है वैसा करने लग जाता है। अगर आपको माला फेरते देखता है तो भी यूं 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 करने लग जाता है, माला फेरने लग जाता है। आपको होठ चलाते देखता है तो भी करता हूं 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 करने लगता है कि नहीं। और आप ऐसे बच्चों को देख के बड़े खुश होते हैं, तो हम सब भी बच्चे के समान है इन बड़े आचार्य और मुनियों के सामने। इनको जैसा देखेंगे वैसा करेंगे, करना भी चाहिए। इन्होंने जैसा शांति सागर महाराज को देखा वैसे कर रही हैं, हम जैसा इन्हें देख रहे हैं वैसा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस मार्ग पर चलते हुए आप भी कोशिश करना कि रोज स्वाध्याय करो, चाहे शास्त्र की 2 लाइन पढ़ो, लेकिन 2 लाइनों के पढ़ने में ही पता नहीं कौन सी लाइन कौन सा शब्द अपनी आत्मा का कल्याण कर दे। तो ये हमने सम्यक दर्शन की बात सुनाई कि श्रावकों के विकल चारित्र होता है और संतों के सकल चारित्र होता है। उस सकल चारित्र में शुभोपयोग और शुद्धोपयोग दो अवस्थाएं होती हैं और श्रावकों के विकल चारित्र में केवल शुभोपयोग होता है, शुद्धोपयोग की बात नहीं है। यही आज के स्वाध्याय का सार समझना।